Giá thật của con. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت بندگی میں سیدنا شاید امیر صدیق ملائے حامل بار ایمان عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کری کری دعا امام القائنات حضور میراث محمد عبد مہدی ماؤں خاتم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائل میں سے آپ کے تصنیفات میں سے جو چار مشہور رسائل ہیں ایک ہے عقیدہ شریفہ جو مول عقائد کے نام سے مشہور ہے اس سے پہلے غالباً دو مرتبہ جو ہے ہم نے کتاب پڑھی عقیدہ شریفہ جو مول عقائد ہے پورے عقائد جو دنیا میں لکھے ہیں کہ اس کی تفصیل بھی بندگی سے معراج رحمتہ اللہ علیہ جو بندگی میں شاہ حسین رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفے ہیں انہوں نے اس میں سے جو معقوص کیا ہے بیس اعتقاد فرائض ہی اور دس اعتقاد جو فرائض عملی عقیدے کے فرائض اور عملی فرائض اس کی ہم نے باقاعدہ جو ہے نشستیں چلائی تھیں وہ ویب سائٹ کے اوپر سیو اس کے اکارڈنگس فرائض اعتقادی اور فرائض عملی کے نام سے یعنی وہ فرائض وہ اعتقادات جو ہر مذہبی کے اوپر فرض اور وہ اعمال جو ہر مذہبی کے اوپر فرض وہ اعمال سن سکتے ہیں وہ عقیدہ شریفہ ہی سے کا جو ہے اس کی تفصیل ہم نے پوچھ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے المعیار جو کتاب ہے جو ہم نے آج کا عنوان چنا ہے ایک دو کی نشستوں میں جو ہے یہ بندگی میں ان کا جو دوسرا رسالہ ہے المعیار وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھا جائے گا اس کی خصوصیت کیا ہے اس وجہ سے یہ کتاب خاص طور پہ چنی گئی ہے پڑھنے کے واسطے وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے ان شاء اللہ اس کی ہدایت کی جائے گی لیکن اس سے پہلے چند ہدایات چند ایک دو تین باتیں کہہ رہا ہوں ماحول کے حساب سے اس کے بعد جو ہے کتاب کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا لیکن یہ ہم ایک پرفتن دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہر طرح کے فتنے ہر روز اتنے فتنے جو ہے امنڈ کر آ رہے ہیں اس میں ایک سب سے بڑا فتنہ جو اسفاقت کا ہے وہ اسمارٹ فون ہے فون آپ کا اور پھر اس کے اندر واٹس ایپ فیس بک اس وقت کے جو ہے بہت بڑے فتنے ہیں تو اس وقت یہ حقیقت جو ہے مخاطب اپنے مخلص ساتھیوں سے ان لوگوں سے ان بندگان خدا سے جو اللہ کے طالب ہیں جو زندگی کی قدر کرتے ہیں جن کا مقصد امام مہدی ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا مقصد یعنی اللہ کا دیدار ہے ان کے واسطے یہ حقیقت مخاطب کر رہا ہے کہ برائے خدا آپ ان فتنوں سے بچیے جو کچھ کے درپیش ہو رہا ہے جو کچھ کے ظہور میں آ رہا ہے جو کچھ کے فتنے آ رہے ہیں اس سے آپ بچیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس سے آپ کو بچنا ہے جو افواہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے جو افواہ کو چھپایا جائے گا جو بولنے والے ہیں وہ برابر بولتے رہیں گے لیکن عوام جو ہے اس فتنے سے بچنا ہے تو اس میں آپ کو بالکل کٹ آف رہنا ہوگا ورنہ جو اس فتنوں میں بہتے جائیں گے کیونکہ فتنے پیش کرنے والا جو ہے کئی الگ الگ طریقے سے جو ہے فتنے پیش کرے گا تو جو وہ لوگ جو زندگی کی قدر کرتے ہیں جو جانتے ہیں کہ جو ہے یہ ایک موقع ہے دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے اللہ کی بندگی کرنے کا اللہ کو حاصل کرنے کا ان سے گزارش ہے کہ جو ہے ان فتنوں سے بچیے واٹس ایپ کے گروپ پہ ہونے والے فتنوں سے آپ کے جو کچھ کے پیش آ رہا ہے ان فتنوں میں جو ہے آپ انوالو ہرگز نہ ہوئے ان فتنوں میں جو ہے آپ ہرگز انوالو نہ ہوئے ورنہ جو ہے آپ دیکھیے بہتے چلے جائیں گے ایک کے بعد دیگر کئی کئی جو ہے چیزیں لہو بیکار چیزیں آتی جائیں گی بیکار سے بیکار جو ہے چیزوں میں جو ہے ہم جو ہے مبتلا ہوتے جائیں گے جو حق بات ہے جو اپنے خلاف بات کی جا رہی ہے دوسروں کا فرمان ہے میری ایک جماعت پہلے مت کی ایک جماعت قیامت تک حق کے پاس سے ڈرتی رہے گی تو وہ جماعت اللہ تعالیٰ جو ہے جو جماعت ہے اللہ کے پاس اللہ کی علم ہے وہ جماعت جو ہے وہ کام کرتے رہے گی عوام سے گزارش ہے کہ جو ہے ان فتنوں سے جو ہے بچ کے رہیے پرہیز کریے خاص طور پہ واٹس ایپ پہ ہونے والے ان فتنوں سے ان خراب حالات سے خراب خراب چیٹنگ سے جو ہے آپ جو ہے بچ کے رہیے ورنہ جو ہے ہم اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ڈسٹریکشن ہوتا ہے آپ کافی جو ہے اس کے اندر پراگندگی جو ہے جن پہ جو ہے چھا جاتی ہے آپ کا ذکر فکر وغیرہ ہر چیز جو ہے آپ کی جو ہے پرے ہو جاتی ہے تو برائے خدا جو ہے آپ ان سے جو ہے بچ کے رہیے اللہ کو حاصل کرنا اگر ہمارا مقصد ہے تو زندگی قدر کی لہو جو بیکار چیز کو کہتے ہیں حضرت زرین صاحب نے اطلاع ہے حضرت الفان میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا کہ لہو وہ ہے جو ذکر اللہ کے سوائے جو اللہ کی یاد کے سوائے وہ لہو ہے سب بیکار ہے بلکہ لہو مطلب بیکار جو چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ جو کچھ کے اللہ کی یاد کے سوائے ہے وہ سارا جو ہے لہو ہے بیکار چیزیں ہیں تو آپ اس بات کا جو ہے خیال رکھیے اپنی زندگی کی ہمیں جو ہے قدر کرنا ہے اپنے وقت کی ہمیں قدر کرنا ہے بلکہ ایک روایت یقین نے ایک جگہ پڑھی ہوئی تھی اسی طریقے میں کہ خود قیامت میں جو ہے دو گروہوں میں جب مباحثے وغیرہ ہوں گے تو دونوں بھی جو ہے حق پہ نہیں ہوں گے کیونکہ جو ہے وہ اپنے نفس کے واسطے جو ہے لڑ رہے ہوں گے اس کی طرف نہیں ہوں گے खाली जो है वहाँ वहाँ जो है अपने नफ्स के अफेयर में इनके जो है उनके लड़ाइयाँ होती जाएंगी, इससे बचते रहिए आप लोग। आपके सामने है किताब अलमियार, वही जा रही है बंदी में से बचाए उन्नीस से चलिए उनकी किताब है। इस किताब के बारे में शरीयत की शरीफा में हजरत सिर्फ खूबियाँ खुदबुद्दीन खूबियाँ साहब पानीपुरी रहमत लाल और सीरत सिद्दीक़ में हजरत सिर इसमाइल मूसेमिया साहब रहमत लाल ने दूसरे किताबों के हवालों से इंतखाब अल-मवारी और दफ्तर अव्वल और फातिमा सुलेमानी वगैरह की जो है हवालों से ये बात लिखी है। इस किताब के बारे में लिखा गया है अलमियार में, इसे रिसाले शरीफा भी कहते हैं, इसे जो है उमूर रिसाला मारिफत महदी मकसद अव्वल भी कहते हैं। और इस रिसाले के तरफ से ये भी लिखा गया है कि इमाम महदी मौद अलैहिस्सलाम के बाद सबूत महदी पर लिखे जाने वाला ये पहला रिसाला है। इसमें सिर्फ सबूत महदी पर बात नहीं है बल्कि जो है कई और दीगर चीज़ों के ऊपर भी जो गुफ्तगू है जो एक सालिक के वास्ते बहुत अहम है, अल्लाह के रास्ते में जो चलना चाह रहा है उसके वास्ते भी जो है काफ़ी मदद होगी। तो इस रिसाले के तल्लुक से इंतखाबुल मवालिद वगैरह के हवाले से लिखा हुआ है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहान वक्त को खुतूत लिखकर इस्लाम की तरफ दावत दी थी। इसी तरह हज़रत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने भी सुल्तान महमूद बेगड़े बादशाह गुजरात को तस्दीक मेहदी की दावत दी। इसके बाद सुल्तान महमूद बेगड़े के बेटे सुल्तान मुजफ्फर सानी वाले गुजरात था उसको भी तस्दीक मेहदी की दावत देते हुए हज़रत सिद्दीक़ विलायत ने मुदल्लिल पर रवाना फरमाया। इसके अलावा मुल्ला मुइनुद्दीन पटनी को भी जो अपने वक्त का नामवर आलिम गुजरा है दावत तबलीग के दावत तबलीग के तहत ये रिसाला पढ़ा जा रहा है सबूत मेहदी में लिखकर रवाना फरमाया। इसके बाद उसी से लिखिए इस रिसाले की तस्नीफ के वक्त, यही अहम वजह पढ़ रहा हूँ, इस रिसाले की तस्नीफ के वक्त हज़रत सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला अपने खलीफे व दामा बंदगी मियां मलिक जी बिन ख्वाजा ताहा अलमारूफ़ बमहदी रज़ी अल्लाह तआला को जब मजमून लिखवा रहे थे, यानी बंदगी में मजमून बोलते जा रहे थे और आपके दामा जो है लिखते जा रहे थे, तो मलिक जी महदी रज़ी अल्लाह तआला को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि हज़रत सिद्दीक़ विलायत पहले से तरतीब दी हुई किताब से इबारत को अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा फरमा रहे हैं। पहले से किताब तरतीब कर दी गई है उसको जो है बंदगी में अरुण जो है सिर्फ बोलते जा रहे हैं। उस वक्त हजरत सिद्दीक़ विलायत की साहिबजादी बीबी फातिमा जो मलिक जो मलिक जी मेहदी अरुण की जोजा है वो भी वहाँ पर मौजूद थी, अभी बेटी थी, उन्होंने भी लिखाई जाने वाली इबारत को थोड़ी देर तक सुना और कहा, बेटी ने कहा ऐसा मालूम हो रहा है कि ये मजमून हजरत का सोचा हुआ नहीं है बल्कि हजरत को जैसी तालीम हो रही है आप अपनी जुबान मुबारक से वैसी ही इबारत लिखवा रहे हैं। ये सुनकर हजरत महरी रजी अल्लाह ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। बंदगी में हजरत शायद उम्मीद रजी अल्लाह ने दोनों की ये बात सुनी तो इरशाद फरमाया हाँ ऐसा ही है, बंदा अपनी जात से कुछ नहीं कह रहा है बल्कि खुदा तआला की तरफ से बंदे को जो कुछ मालूम कराया जा रहा है बंदा वही कहता जा रहा है। तो ये खासियत है इस किताब की बंदगी में अपनी मालूम इलाही थी जो है आपने जो कुछ कैलाश तालीम पाई वो आपने लिखवाई। रिवायत है कि बंदगी में रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकमील के बाद मिसाले जब तकमील हुआ इसी रिसाले के तल्लुक से इरशाद फरमाया, मिसाले को जो बंदगी में तकमील कर दिया तो खुद बंदगी में फरमाया कि ये रिसाला आब ज़र से लिख रखने के काबिल है, सोने के पानी से जो है लिखे जाने के काबिल है। बंदगी में खुद फरमाया ये रिसाला आब ज़र से लिखने के काबिल है। चुनाचे वाक़ में ऐसा हुआ अल्लाह और उनकी जुबान से जो अदा होता है अल्लाह उस बात को जो है पूरा करता है। चुनाचे वाक़ भी ऐसा ही हुआ कि बंदगी में मलिक पीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो हज़रत खलीफे के वज़न है उनके साथ हुमायूं बादशाह और उसके भाई हिंदाल कामरान और मिर्ज़ा अस्करी डूंगरपुर इलाके मेवाड़ा बंदगी मलिक इलाहाबाद के फिक्रों की खिदमत में आए तो हुमायूं को ये रिसाला दिखाया गया। हुमायूं ने इस रिसाले को देखा पढ़ा और बहुत पसंद किया और कहा ये रिसाला आबे ज़र से लिख रखने के काबिल है। फिर उसने आबे ज़र से इस रिसाले को लिखवा कर अपने शाही कुतुबखाने में रखने का हुक्म जारी किया। का जो कहा वो उन्होंने पूरा किया, इस तरह हज़रत सिद्दीक़ विलायत का कहा पूरा हुआ। इस रिसाले को उम्मु रिसाला मौनिकत मेहदी मकसद अव्वल भी कहा जाता है। एक सारा फारसी जुबान में था हज़रत से बिलावल बुरे में था रहमत लाल ने मुझे सिखाने का जो है तर्जुमा किया है तकरीबन 50 साल पहले जो है एक साल छपा गए उसमें से जो उर्दू इबारत है जो तर्जुमा है हज़रत के वतन का जो तर्जुमा है वो आपके सामने जो है पढ़ा जा रहा है। इब्तदा इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है, और हम उसी से मदद चाहते हैं और उसी पर मेरा भरोसा। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए सजावार है, जिसके हाथ में बादशाहत है, जिसको चाहता है देता है, और उसने अपनी कुदरत से ज़मीन को फैलाया और आसमान को बुलंद किया। बस बुजुर्ग है वो ज़ात जिसके सिवाए कोई माबूद नहीं, वही नेमतों को अता करता है और अपने बंदों से जंग की शक्ति और कैद के नुकसान को दूर करने वाला है। उसकी नेमतों के पे दर पे होने पर हम उसका हमद करते हैं और उसके गहरे एहसानात पर हम उसका शुक्र करते हैं। बंदगी मरदूँ आप बुजुर्ग करें कि बंदगी मरदूँ ये कह रही है उसका फलाम होता है, और गुरु नाजिल हो उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रोशन शरीयत वाले और वाज़े साफ तरीके वाले तमाम रसूलों और नबियों में अकमल, जिनके हाथ में हम का झंडा रहे। बस आदम और तमाम अम्बिया क़यामत के दिन आपके झंडे के नीचे रहेंगे। इसी तरह हज़रत यकीदर से बात कर रहा हूँ कि हज़रत दुनिया दुनिया सुजावंद अलहमदिल्ला रमतल आप अपनी किताब फसाय से इस्लाम में लिखते हैं कि इस्लाम की खसूस ये है कि क़यामत के दिन सब अम्बिया खातिम नबूवत के झंडे के नीचे जमा होंगे और तमाम औलिया खातिम विलायत मोहम्मद मेहदी के झंडे के नीचे जमा होंगे। खसूस के जो है हवाले साथ ही लिखा है, हज़रत लिख रहे हैं खसूसन के तलब से कि क़यामत तमाम अम्बिया क़यामत के दिन आपके झंडे के नीचे रहेंगे। अल्लाह दुरूद नाज़िल करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल बुजुर्ग शरीफ पर। लेकिन बाद जो है एक खुदे के बाद आप कह रहे हैं कि बाद हम मुसलात के हज़रत मेहदी अलैहि सलाम और आपके असहाब की पहचान के बयान में चंद कलमात इन और आप में लाए गए इस्लाम की मारिफत में, इस्लाम के बारे में पहचान के बारे में, और आपके असहाब का उस वक्त जो बदगुमानियाँ थी, जो अफवाहें वगैरह थी, जो तोहमात थे, उसका भी जो है रद्द किया गया है। तो लिख रहे हैं कि हज़रत मेहदी अलैहि सलाम और आपके असहाब की पहचान के बयान में चंद कलमात इन और आप में लाए गए, इसलिए कि बाद लोग जो हज़रत सैयद मोहम्मद यानी मेहदी मौऊद अलैहि सलाम के असहाब के अहवाल से गाफिल और पर्दे में हैं और उनको नाशाइस्ता औसाफ से मंसूब करते हैं और उनके मुताबिक बदगुमानी करते और फासिल इत्तेहाद रखते हैं और उन पर बातिल अहकाम लगाते हैं और नहीं जानते कि उनकी हालत क्या है। बस अजीज जान के अल्लाह ताला जिसको चाहता है कि अपनी तरफ रहबरी करे और अपना मुखालिफ बनाए तो उसको उसके ख्वाहिशात और मुरादात से निकाल देता है और मखलूक को उस पर मुकर्रर करता है, उसके दुश्मन बन जाता है। बड़े खास अल्फाज लिखे, अल्लाह ताला जिसको चाहता है कि अपनी तरफ रहबरी करे और अपना मुखालिफ बनाए, अपना करीब करे, तो अल्लाह उसको क्या करता है? तो मेरा कहना है कि अजीज जान के अल्लाह ताला जिसको चाहता है कि अपनी तरफ रहबरी करे और अपना मुखालिफ बनाए, अपने से करीब करे, तो उसके उसको उसके ख्वाहिशात और मुरादात से निकाल लेता है। उसकी जो नफ्सानी ख्वाहिशात मुरादात हैं सारे तोड़ दिए जाते हैं, उसकी यादें टूटते रहते हैं, ख्वाहिशात जो है उसकी निकल जाती है और मखलूक को उस पर मुकर्रर करता है, मखलूक दुश्मन हो जाती है। इसमें क्या उसकी हिकमत होगी आगे बयान की जाएगी, क्योंकि उस वक्त जो है इस्लाम के सहाबा की जो है मखलूक दुश्मन हो चुकी, और मैं तो क्योंकि हमेशा जो है जो अल्लाह वाला होता है उसकी मखलूक हमेशा दुश्मन होती और उसकी वजह क्या है वो भी बयान की गई। आगे हज़रत लिख रहे हैं कि और उसकी दुश्मन बना देता है, मखलूक को उस पर मुकर्रर करता है और उसकी दुश्मन बना देता है और मखलूक के जरिए से उसको रंज और तकलीफ पहुंचाता है। देखिए खुदा ही पहुंचा रहा, मखलूक ने पहुंचे ये बात का ख्याल किया, मखलूक के जरिए से उसको रंज और तकलीफ पहुंचाता है ताकि उसका दिल यानी तालिब मौला का दिल इस जहां के ताल्लुकात गैरुल्लाह की मोहब्बत यानी अल्लाह के अलावा जो कुछ की उसकी मोहब्बत और मखलूक की उल्फत यानी लोगों की जो दिल में उल्फत है अल्लाह के अलावा जो कुछ की उल्फत है उससे मुनक़ता हो जाए, अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की मोहब्बत के लिए वक्त हो जाए, यानी आपके ऊपर जब तकाली मुसीबत ये मखलूक आपको तंग करने लगेगी तो आपका दिल जो है टूटता जाए, जो जो आपको तकलीफ देगा उससे जो है आपका दिल टूटता जाएगा और अल्लाह की तरफ जो है आप जो है मायल होते जाएंगे। तो ये आसान तरीका है अल्लाह का, यानी आपको जो है मखलूक इनामात दे रही है, नवाज रही है, आपकी तारीफें कर रही है, आपको जो है बहुत सारी फुतू आ रही है, तो आपका दिल मखलूक से मुनक़ता नहीं होगा, और जब तक मखलूक से आपका दिल मुनक़ता नहीं होगा खुदा की तरफ राजी नहीं होगा। और हम मखलूक में रह रहे हैं, मैं भी इंसान हूँ वो भी इंसान है, उनसे जुदा होना इतना आसान नहीं है। तो अल्लाह की हिकमत है मैं ये काम करता है कि बंदे को अपनी तरफ खींचना होता है तो ये जो मखलूक है उसको जो है दुश्मन बना देता है, वो बजाय जो उसकी तारीफ करने के, बजाय जो उसको कुछ देने के, बजाय जो उसके ऊपर नमाना इनामत नवाजने के कुछ करने के, वो उसको जो है गालियाँ देती है, वो उसको जो है नवा वो जो है उसको तंग करती है, वो कुछ देने के बजाय जो उसके ऊपर निमाना इनामत नवाजने के कुछ करने के वो उसको जो है गालियां देती है, वो उसको जो है नवा वो जो है उसको तंग करती है, ताने पीछने लड़ाई गाली हर चीज होती है। यहाँ तक कि मंदिर में खुद फरमाते हैं कि बंदा जो है गालियों का झाड़ बन चुका है, और इस्लाम खुद फरमाते हैं कि जो है आप फरमाते हैं कि जो है इस शेर का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ कि अगर आपको मारिफत के मैदान में शेर बनना है तो जो है तो उस वक्त तक शेर नहीं बन सकते जब तक कि जो है आप कुत्ते के मानी जो है बाजारी कुत्ते के मानी गरीब और पार ना हो जाए। इस्लाम ये शेर पढ़े और बंदगी में अरजुम ने भी जो है ये शेर पढ़ा है, और फिर इस्लाम ने ये फरमाया कि हम पारशूत 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 यानी हम जलील हुए हम जलील हुए हम जलील हुए, मतलब हर तरफ से जो है गालियों की बौछार होती है, हर तरफ से तान पीटने ये कोई आसान बात नहीं है। वल नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस समरात, हर जगह आपको सिर्फ सबर करना है, जो सबर करेगा जो है उसके लिए जो है बशारत व बशीर साहब। तो अल्लाह ताला जो ये मुकर्रर करता है खुदा मुकर्रर करता है, वो नहीं होता वो दुश्मन नहीं हो रहा है बल्कि खुदा जो है उससे करा रहा है ताकि जो है इसको अजर दे, वो बेचारा तो जो है दोजख में जाएगा, और जो है यहाँ पे ये लोग जो है वहां पे सबर करने की वजह से उस मखलूक की जो है ईजा रिसानी पर ये लोग जो है अल्लाह के इजार से मुशर्रफ होते हैं। तो ये अल्लाह की नवाजिश है, इसीलिए बंदगी में फरमा रहे हैं, फिर से पढ़ा हूँ कि अजीज जान के अल्लाह ताला जिसको चाहता है कि अपनी तरफ रहबरी करे और अपना मुखरिब बनाए तो उसको उसके ख्वाहिशात और मुरादात से निकाल देता है और मखलूक को उस पर मुकर्रर करता है और उसकी दुश्मन बना देता है और मखलूक के जरिए उसको रंज और तकलीफ पहुंचाता है ताकि उसका दिल इस जहां के ताल्लुकात गैरुल्लाह की मोहब्बत यानी अल्लाह के अलावा जो कुछ है उसकी मोहब्बत और मखलूक की उल्फत से मुनक़ता हो जाए, कट जाए, अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की मोहब्बत के लिए वक्फ हो जाए, जैसा कि अल्लाह का तालिब फरमाता है। एक रुबाई है बंदगी में लिख रहे हैं कि जैसा कि अल्लाह का तालिब एक तालिब है जो ये रुबाई कह रहा है कि या रब हमा खल करा बमन बदखुन बस जुमला जहानिया मेरा एक सुन कुन, यानी तालिब मौला दुआ कर रहा है अल्लाह से कि या अल्लाह तमाम मखलूक को मेरी मुखालिफ बना दे और तमाम जहां वालों से मुझको अलग कर दे, मेरे दिल के रुख को हर तरफ से फेर दे, मुझको एक जहत और एक रूह कर दे, यानी जो है वो खुद दुआ कर रहा है कि जो है मखलूक को जो है मेरी दुश्मन बना दे और तमाम जहां वालों से मुझको अलग कर दे, मेरे दिल के चेहरे को हर तरफ से फेर दे और मुझको एक जहत और एक रूह कर दे, सिर्फ अल्लाह को सुनूं अल्लाह को देखूं अल्लाह की तरफ हो जाऊं। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आ रहा है, अशआर में कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से जवाब आ रहा है कि जिस जवाब मिनजानी अल्लाह मिलता है कि जिसके साथ तू मिलना जुलना चाहता है, यानी अल्लाह से अगर तू मिलना चाह रहा है जान ले कि उससे तुझको आराम नहीं मिलेगा, मैं तुझको परेशान करूंगा क्योंकि तू हमारा है, मखलूक को उसके खिलाफ में मुकर्रर करने में। देखिए अल्लाह का जवाब आ रहा है कि जिसके साथ तू मिलना जुलना चाहता है जान ले कि उससे तुझको आराम नहीं मिलेगा, मैं तुझको परेशान करूंगा क्योंकि तू हमारा है। अल्लाह उसको परेशान करे, इसीलिए कहा जाता है कि भलाए हर दो जहां एक जा जमा कर दन फसा इश्क बाजी नाम कर, यानी दोनों जहां की भलाया को परेशानियों को मुश्किलों को एक जगह जमा कर और उसका नाम इश्क बाजी रखो, वो इश्क का मैदान इश्क के खेल का मैदान ये है कि तमाम जहां की भलाया परेशानियां मुश्किलें हर तरफ से उमड़ के आ जाती है उसका नाम इश्क बाजी है, करता गुजारता है क्योंकि ये अल्लाह का कानून है बनाया मखलूक जो है मुखालिफ हो जाती है, इसलिए खुद वो कह रहा है कि जिसके साथ तू मिलना जुलना चाहता है अल्लाह से, अगर तू मिलना जुलना चाहता है तो जान ले अलर्ट हो जाओ कि उससे उससे तुझको आराम नहीं मिलेगा, वो आराम से नहीं रहेगा, मैं तुझको परेशान करूंगा क्योंकि तू हमारा। आगे लिख रहे हैं बंदगी में बड़ा खास बात है कि मखलूक को उसके खिलाफ में मुकर्रर करने में हिकमत ये हिकमत है मखलूक के खिलाफ मुकर्रर करने में कि आदमी की फितरत इस बात पर हुई है, आदमी की फितरत है, आदमी की फितरत इस बात पर हुई है हर चंद चाहता है कि मखलूक से मुंह फेर ले और अपने हम जिनसों से अलग हो जाए, लेकिन फितरत की वजह से अपने जैसों की तरफ ही मिलान होता है, फितरत है उसकी, इंसान है तो इंसान ही के साथ रहेगा, इंसान है तो जो है इंसान ही के साथ रहेगा, तो उसकी फितरत है वो चाहते हुए जो है उस फितरत से हट नहीं सकता, वो चाहता है कि जो है इनसे कटे गोशा नशी हो जाए अल्लाह की तरफ जो है हो जाए, लेकिन जो किसकी फितरत है वो लोगों के साथ रहना चाहता है, लोगों के साथ जो है मिलना जुलना चाहता है, कभी सफर पे निकलते तो जो है घर को लौटते खुशी होती है, एहतिकाफ में होते हैं तो जो है घर पे जाने पे खुशी होती है क्योंकि आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप थोड़े दिन तक जो है अलग रह सकते हैं, तो अल्लाह की हिकमत ये मखलूक अगर खुद मुखालिफ हो जाए यानी वो जहाँ को आराम नहीं पहुंचा जहाँ पे आप आराम करना चाह रहे थे, तो खुद बहुत जो यहाँ पर दिल उनसे टूट जाता है। जब दिल उनसे टूटेगा तो अल्लाह की तरफ लगेगा। इस्लाम ने साफ फरमाया है कि उसी का दिल अल्लाह की यहाँ पे लगेगा जिसका दिल कहीं पर भी लगा हुआ ना हो, कहीं पे भी करते फॉर्मूला ये कि कहीं पे भी अगर दिल लगा हुआ ना हो तभी अल्लाह की यहाँ पे दिल लगेगा, अल्लाह की तरफ दिल लगेगा। तो वो कटने के लिए अल्लाह खुद जब अपने बंदे को अपनी तरफ जो है खींचना चाहता है तो ये मखलूक को मुखालिफ कर देता है। और इसीलिए बंदे के लिए कहना है कि मखलूक को उसके खिलाफ मुकर्रर करने में हिकमत ये है कि आदमी की फितरत इस बात पर हुई है, हर चंद चाहता है कि मखलूक से मुंह फेर ले और अपने हम जिनसों से अलग हो जाए, लेकिन फितरत की वजह से अपने जैसों की तरफ ही मेलान होता है। मगर अल्लाह ताला अपने फजल से उसके हम जिनसों से अलग कर देता है और अपनी रजा पर कायम रखता है। चुनाचे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम व अकमल तैयार के हक में हक सुबहान ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है कि वलौला अन सब्बतना लकद कित्ता दरकुम इलैहिम शैय्यन क़लीला। अल्लाह फरमा रहा है अगर ये बात ना होती कि हमने तुझको साबित रखा तू भी झुकने लग ही जाता उनकी तरफ थोड़ा सा, मगर जो है अल्लाह साबित करना रखा तू भी झुकने लग जाता उनकी तरफ थोड़ा सा। यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है अलर्ट भी रहिए, रसूल की शान मुबारक है वहाँ पे जो है रसूल जो है उस तरफ झुक ही नहीं सकते। ये कह रहा है अल्लाह ताला कि जो है अगर हमारा जो है हम आपको साबित कदम ना रखते तो तू भी जो है उनकी तरफ झुक ही जाता। ये हमारे वास्ते जो है मिसाल है। यहाँ पे आगे बंदगी फरमा रहे हैं कि जब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखलूक की तरफ मायल हो जाना मुमकिन है तो दूसरा शख्स मखलूक से किस तरह अलग रह सकता है? बिल जरूर। तो इसलिए हमको अलर्ट किया गया है, यहाँ पे जो है आपको आगाह किया गया है। तो इसलिए जो है आप लिख रहे हैं कि बिल जरूर अल्लाह ताला तमाम मखलूक को अपने तालिब पर मुकर्रर करता है और मखलूक को अपने तालिब की दुश्मन बनाता है ताकि तालिब अपने दिल के रुख को मखलूक की तरफ से फेर दे और खालिक की तरफ ला दे। चुनाचे खुदाए पाक को बरतर ने अपने पैगंबरों के हक में फरमाया, सूरह नाम की आयत है कि अल्लाह ताला फरमाया कि और इसी तरह हमने पैदा कर दिए हर नबी के दुश्मन शैतान आदमी और जिन के सिखाता रहता है एक दूसरे को मलमदार बातें फरेब देने को। चूंकि मेहदी अलैहिस्सलाम और आपके असहाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हैं तो बिल जरूर मखलूक उनके साथ भी अदावत करती है। सीधी सीधी बात है, मेरी मौत अलैहि सलाम जो है रसूल की किताबें हैं, रसूल के सहाबा जो है रसूल की किताबें वही अमल लेके आए हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मखलूक दुश्मन हुई है तो जो है जरूर मेरी मौत अलैहि सलाम सहाबा मेहदी और जो कुछ भी अल्लाह वाला होगा वो यकीनन जो है मखलूक जो है दुश्मन होगी। चूँकि मेहदी अलैहि सलाम और आपके असहाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हैं तो बिल जरूर मखलूक उनके साथ भी अदावत करती है, यानी दुश्मनी करती है और मुखालिफत जाहिर करती है। क्योंकि जब मदबू यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में खबर दी है कि और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कर जब तुझ पर दाव चलाना चाहते थे काफिर ताकि तुझको कैद कर दें या मार डालें या निकाल दें और वो दाव कर रहे थे और अल्लाह भी दाव कर रहा था और अल्लाह का दाव सबसे बेहतर है, बस बिल जरूर ताबे पर भी यानी मेहदी अलैहि सलाम पर भी वही बात लाजिम आएगी, यानी लोग चाल चलेंगे उसको तकलीफ पहुंचाना चाहेंगे। और ये बात हकीकत में ये बात मखलूक जब दुश्मन होगी तो ये बात जो है मेहदी की सदाकत की दलील है, सच्चाई की दलील है कि लोग जो है मुखालिफ है। और दूसरी दलीलें जो किताबों से मालूम हुई हैं बहुत हैं लेकिन बखौफ तवालत इख्तिसार से काम लिया गया, तबील ना हो जाए किताब इसीलिए मुख्तसर मुझे काम लिया गया और चंद कलमात इन और आग में लाए गए ताकि जो शख्स उनसे यानी असहाब मेहदी से बदगुमानी करता है और उन पर झूठे तोहमात लगाता है यानी तोहमात लगाता है इल्जाम लगाता है उसको तौबा और रुजू करने का मौका हासिल हो और मुखालिफ जान लेने की जो नाशाइस्ता सिफत सैयद मोहम्मद यानी मेहदी मौऊद अलैहि सलाम के असहाब के साथ मंसूब कर रहा हो महज खता है। क्योंकि जो शख्स कहता है कि सैयद मोहम्मद उस वक्त पे जो है एक जो है नाशाइस्ता कलमा एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि सैयद मोहम्मद मेहदी मौसलाम के सहाबा नाक को जिक्र का आला बनाए हैं और उसके खिलाफ बेतहाशा किताबों से दलीलें पेश कर देंगे। मस्जिदुल्लाह जो है पास और पास आंसू में जिक्र की जाती है तो अल इमाम अहमद जो है एक बात को जो है टू नोट पे किया था कि मैक्सिमम इस्लाम के सहाबा जो है नाक को जो है जिक्र का आला बनाए थे, खाली मतलब इसी से जो है जिक्र करते उसको आला बनाए थे, और उसके उसकी तारीफ में जो है अलग अलग बातें पेश करते थे। आगे हम लिखने का और कहता है इमाम कुशेरी ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से के मुतालिक ऐसा कहा, उसके खिलाफ जो है दलील लाते थे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वाकई थी इमाम कुशेरी की जो है किताब से तफसीर से, और फला शख्स ऐसा है ऐसा कहता है और नहीं जानता कि सैयद मोहम्मद के सहाबा की क्या हालत है और सहाबा किस रास्ते पर चलते हैं और तमाम अहवाल और अफवाल में किसकी पैरवी करते हैं। अजीज जान ले कि सैयद मोहम्मद यानी मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा का मकसूद तमाम अखबार व अफवाल में यानी जो कुछ के कह रहे हैं और जो कुछ के कर रहे हैं सिर्फ यही है कि खुदा की किताब और पैगंबरों की पैरवी हासिल हो और खुदा और रसूल के फरमान और अहले दीन के अखबार पर अमल किया जाए। अल्लाह के फरमान और रसूल की फरमानी और अहले दीन के अखबार पर अमल किया जाए। बस नाचा जिक्र में भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं क्योंकि हमारा तरीका यही है कि हम खुदा की किताब के और रसूल के फरमान की और जो अहले दीन हुए जो मुसलमान दीन उनके अफवाह पर अमल करते हैं, तो हम भी जो है वही काम करेंगे जो रसूल ने किया है। बस नाचार जिक्र में भी बस नाचार जिक्र में भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं और खुदा की किताब के साथ मुआफ़िक़त करते हैं। चुनाचे खुदा पाक और बरतर ने फरमाया अल्लाह ताला के इरशाद मुबारक है सूरह एराफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि वस्कुर रब्बिका फी नफ्सिका तज़र्रुअन वा खीफतन वा दूनल जहरी मिनल क़ौली बिल गुदुवी वल आसाली वला तकुन मिनल गाफिलीन। देखिए ज़िक्र खफी के ताल्लुक़ से ज़िंदगी में एक खास आयत ये है, हम जो जिक्र करते हैं ज़िक्र खफी जो है उसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह एराफ में फरमा रहा है कि खुदा पाक और बरतर ने फरमाया कि और अपने परवरदिगार का जिक्र करता रहे जी ही जी में वस्कुर रब्बका फी नफ्सिका अपनी ही नफ्स में तज़र्रुअन व खीफतन गिड़गिड़ाता और डरता हुआ और धीमी आवाज व दूनल जहरी बगैर आवाज़ की, बगैर आवाज़ के जिक्र करना है ये जिक्र जहरी नहीं है बल्कि जिक्र खफी हो गया, ये सबूत है जिक्र खफी की जगह पर यह आयत है व दूनल जहरी मिनल क़ौली और धीमी आवाज़ से बोलने में बिल गुदुवी वल आसार और सुबह और शाम और नारे वाला हुकुम मिनल काफिल और नारे काफिलों में से और नबी ने की आयत लिखी है कि सहाबा जो इस्लाम के सहाबा और जो कौम जिन्हें ये जिक्र करती है इसके ऊपर कुरान मजीद की आयत गवाह। इसके बाद और बंदे में लिखते हैं कि और ज़करिया अलैहि सलाम के किस्से से भी अल्लाह ताला अपने कलाम में खबर देता है जहाँ के फरमाया खुदा पाक वो बरकर ने कि जब ज़करिया ने पुकारा अपने परवरदिगार को आहिस्ता आवाज से, साहिब मदारिक ने तफसीर मदारिक में से जिंदगी में हवाला दे रहे हैं कि इस आयत की तफसीर में कहा है कि यानी पुकारा अल्लाह को पोशीदा तौर से पुकारना जैसा कि इसी तरह पुकारने का हुक्म है, जो खास तरीका है पुकारने का वो खुफिया तरीके से पुकारा जाता है जो जिक्र खफी है, क्योंकि उस वक्त जो है काफ़ी जो है इस तरह से जो है तंग किया जा रहा था और ये तरीका जो जिक्र खफी है हमारे पास अल्लाह का जिक्र करना है जिंदगी में लिखने का, और ये तरीका रियाकारी से यानी दिखावे से दूर और सफाई से यानी खुलूस से ज्यादा करीब है। जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे पैगंबर जिक्र खफी का हुक्म किए गए हुक्म किया गया तो मालूम हुआ कि जिक्र खफी ही तमाम असकार से ज्यादा बेहतर है और जिक्र का आला दिल है, जिक्र का जो आला है वो है दिल है उसकी तफसील है, और जब तक कि अल्लाह का जिक्र दिल में खरार ना पकड़े जाकिर गफलत की सिफत से अलग नहीं होता। आप समझिए हम जो है खुदा को भूले तो मैं पढ़ा हूँ मैं भूला तो उस वक्त में गाफिल, आप सुन रहे हो अल्लाह को भूले हुए तो उस वक्त हम गाफिल। अब जिक्र इस गफलत से हटना तो मैं सुबह शाम से आप जो जिक्र हम बैठने कर के बाद बैठती हैं और ऐसा के बाद बैठते हैं फिर भी जब हम हर थोड़ी देर को जो भूलते रहते हैं वो गफलत हर थोड़ी देर भूलते रहते हैं यही जो है दुनिया, तो इस गफलत से हटना है तो दिल में जिक्र खराब पकड़ दिल में जिक्र खराब पकड़ लेना जिक्र दिल में जाके जो है बस जाना तो जो है आप जब इस वक्त से हटेंगे उसके बाद जो है आप बयान करो या बयान सुनो आप खाना खाओ आप पानी पियो आप बातचीत करो आपका जो है जिक्र जारी रहेगा। तो बड़ी खास बात हम देखिए मैंने लिखी है कि उसकी वजह क्या है जो जिक्र वक्त से हटते नहीं है और जब तक कि अल्लाह का जिक्र दिल में खराब ना पकड़े जाकिर गफलत की सिफत से अलग नहीं होता। अल्लाह के जिक्र को दिल में करार देना सांसों की हिफाजत के बगैर मुहाल, यहाँ पे जो है दिल में सांसों के ऊपर लिखा है कि सांसों से जो जिक्र करते हैं उसकी वजह क्या है? असल तो जो है जिक्र दिल में करार पकड़ना है ताकि जो है हमेशा अल्लाह के जिक्र में रहे, और दिल में जिक्र करार पकड़ने के लिए आपको जो है सांसों की हिफाजत करना है। सांसों से जो है आपके दिल में जो है जिक्र खराब पड़े उसकी वजह लिखी है दिल में। अल्लाह के जिक्र को दिल में करार देना सांसों की हिफाजत के बाद जहाँ से सांस निकलती है जहाँ पे जाके बैठती है, सांस की करार दा और उसके उठने की जगह दिल ही है। अब साइंस कुछ भी बोले, सांस की जो उठने की जगह है वो सांस की जो खरार का है, जो बैठने की जगह है, जो निकलने की जगह है, वो जो है दिल है। दिल से जो है सांस निकलती है। तो बंदे क्या फरमा रहे हैं, क्योंकि सांस की खरार का और उसमें और उसके उठने की जगह दिल ही है। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का फैसला, वो लोग जो मुखालिफत में सांसों के जिक्र की मुखालिफत में जो बाहर वाले गैर मजहबी जो पेश कर रहे थे हवाला उसकी तरफ से लिख रहे थे, और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा जो इमाम कुशेरी ने अपनी किताब में बयान किया है, वो किस्सा जिक्र खफी के बरखिलाफ और पास अन पास के जिक्र के खिलाफ दलील नहीं हो सकता, क्योंकि पास अन पास यानी सांसों की हिफाजत के जिक्र के बगैर तमाम औकात की शमूलियत के साथ अल्लाह का जिक्र मुयसर नहीं होता, और अल्लाह का जिक्र फर्ज़े दवाम है। बगैर सांसों की हिफाजत की जो है आप हमेशा अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात याद रखिए, बगैर सांसों की हिफाजत के अल्लाह का जिक्र हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप अल्लाह का जिक्र फर्ज़े दवाम है। चुनाचे खुदाए पाक को वर्तर ने फरमाया कि फज़कुरुल्लाह क़ियामं व क़ुऊदं व अला जुनूबिकुम, सूरह निसा की आयत है कि अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह का जिक्र करते रहो खड़े बैठे और लेटे हुए, और ये फर्ज अदा नहीं होता जब तक कि सांस की इबादत ना करे, क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है कि तुम खड़े हुए बैठे हुए और लेटे हुए अल्लाह का जिक्र करो। इंसान ये तीन ही हालत में हमेशा रहता है, या वो खड़ा हुआ रहता है, या वो बैठा हुआ रहता है, या वो लेटा हुआ रहता है। मतलब अल्लाह का हुक्म है कि तुम जो है अब जिस हालत में भी हो अल्लाह का जिक्र करो। आप कैसा करें, मैं बात कर रहा हूँ, आप अल्लाह का जिक्र किस तरह करेंगे, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई काम कर रहा है, वो हमेशा अल्लाह का जिक्र करे कैसा करेगा, लेकिन अल्लाह का तो हुक्म है कि हमेशा जिक्र करो। तो बंदे की तफसील लिख रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि जो है अल्लाह का जिक्र करते रहो खड़े बैठे और लेटे हुए, और ये फर्ज अदा नहीं होता जब तक कि सांस की इबादत ना करें। जब तक कि आप सांस की इबादत ना करेंगे इस फर्ज अदा नहीं होता, और सांस नाक से मुखय्यद नहीं बल्कि इसको तमाम आज़ा में दखल है। इसी वजह से तमाम सालिकीन राहे हक और तालिबान ज़ात मुतलक ने, तमाम अल्लाह वालों ने जिक्र खफी को तमाम अस्कार से बेहतर जाना है, क्योंकि जिक्र खफी और जिक्र पास अन पास के बगैर जाकिर का वजूद, यानी जो मेरा वजूद है, मेरा जो गोनापन है, वो रियाकारी और खुदबीनी की गंदगी से पाक नहीं होगा। ये सबसे बड़े जो है पर्दे हैं हमारे दरमियान में, ये बातें जो है बड़े आसान से कह के निकल रहे हैं, लेकिन एक एक के ऊपर जो है अच्छी तफसील गुफ्तगू की जा सकती है। जाकिर का जो वजूद है वो रियाकारी से निकलना, दिखावे से निकलना, और खुदबीनी खुद की नज़र में वो रखा कि मैं कुछ हूँ, वो इतनी आसानी से नहीं मिटता। अब वो मिटना कोई आसान बात नहीं, हजरत शेख मुस्तफा गुजराते हैं फरमाते हैं कि खुदबीनी कुफ्र अजीम, खुदबीनी जो है सबसे बड़ा कुफ्र है, यानी अपने ख्याल में अपने होने का ख्याल कि मैं कुछ हूँ। ये वैसा फरमाते हैं जहाँ है कर जाने वहाँ नहीं नहीं कर जान, जहाँ नहीं नहीं कर जाने वहाँ है कर जान। अगर आपको कुछ समझता है कि कुछ है, समझना कि कुछ नहीं, लेकिन अच्छा हो उसका ख्याल आता आपको तो वहाँ पर आप फेल हो। होने का ख्याल मतलब जिक्र भी होने का आपका ख्याल जब तक है, आपके होने के ख्याल में जो है आपका जो है नुकसान है। तो बंदेगा लिखते हैं कि वो जो है जब ये हटना है, ये रियाकारी और खुदबीनी हटना है, तो वो जो है पास जिक्र खफी और पास अनपास के बगैर जाकिर का वजूद रियाकारी और खुदबीनी की गंदगी से पाक नहीं होता, और जिक्र दवाम हासिल नहीं होता, हमेशा का जिक्र हासिल नहीं होता जब तक कि जो है आप सांसों की इबादत ना करें। क्योंकि अगर अल्लाह के जिक्र को जुबान से करेगा तो कभी ऐसा होता है कि जाकिर बातों में और कभी खाने सोने में मशगूल होता है, और जब किसी चीज में मशगूल होता है और अल्लाह के जिक्र से बाज रहता है तो उसका शुमार गाफिलों में होता है, और गफलत की सिफत मोमिन के लायक नहीं, बल्कि ये सिफत उन लोगों की है जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने अपने कलाम में खबर दी है कि और हमने पैदा किए हैं दोज़ख के लिए बहुत सारे जिन और इंसान, उनके दिल हैं उनके, लेकिन उनके दिल हैं कि उनसे समझते नहीं, और उनकी आँख है उनके कि उनसे देखते नहीं, और उनके कान है कि उनसे सुनते नहीं। उलाय का कलना, वो लोग चौपायों के मानिंद है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह है। यही लोग काफिर, तो जो अल्लाह को भूलता है अल्लाह के पास जो है वो चौपायों के माने सीधी बात है कि अल्लाह को भूल रहा है। मतलब इससे ये आप लहसुन समझिए, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है मतलब 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 खुदा को भूलना, इसी को जो है दुनिया कहती है। इसलिए मेरी मोहन इस्लाम का फरमान भी इंसाफाने में कि मसला फरमाते हैं कि गफलत हराम, गफलत यानी खुदा को भूलना हराम है। हर चे वाजिब गफलत हराम, और जो कुछ के गफलत की वजह बनेगी वो भी हराम। अब जो भी वजह बनेगी गफलत की वो भी हराम। गफलत देखिए याद रखिए, आप पैदा हुए खुदा के वास्ते, अब खुदा को भूलना हराम है क्योंकि आप पैदा उसके वास्ते हुए। और अल्लाह के पास तो जो है ये अल्लाह कह रहा है कि जो है जो अल्लाह को भूलते हैं वो जो है चौपायों के मानिंदे, जानवरों के मानिंदे, वाकई में ये जानवरों के मानिंदे जो अल्लाह को भूल जाते। इसलिए वाकई यार तो कहती है आपको बोला हम अपने बच्चों को आसानी से समझने भी आए बंदे में शायद मुसल तुम्हारे के वाकई मशहूर है लिखिए कि आपके दायरे से जो है काम करने के लिए जो सौ सुल्तान के तकनीज होती वो जो है जब बाजार को गई तो बाजार में जो है हर तरफ जो है जानवर नजर आए। अजीब मामला देखा, थोड़ी थोड़ी हैरान आई वो हैरत में कि जो है बाजार में चल फिर रहे जानवर रहे हैं, सौदा जानवर खरीद रहे हैं, जानवर बेच रहे हैं। ये देख के जो है वो हैरान परेशान जो है बातें वाली बीवी को आए तो बीवी जो है तो शंसर को बुलाया कहा कि औरत क्या ऐसा कह रही कि जो है बाजार में हर तरफ जानवर नजर आए, जानवर दुकान में बैठे हुए बेच रहे हैं और खरीदने वाले सब जानवर रियायत का देखिए वो मिजदाक है। तो हजरत शायद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम करवाया कि जो है मालूम तो करो वो क्या चादर होगी रखते हैं, बस चादर क्या है और क्या होगी नहीं तो मालूम हुआ कि जो है वो गलती से मुर्शिद आला हजरत शायद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर होती चलेगी। तो उसने वो देखा जो हजरत ने देखा और हजरत अल्लाह की जात में मना है, हजरत वो देख रहे जो अल्लाह देख रहा है। तो ये आयत का सबूत है ये वाकया कि उलाइका का लाना अल्लाह में जो कह रहा है कि वो चौपायों के माने ने जानवरों के माने तो वाकई में वो हैं। अल्लाह हमारे बचाए हम बोल रहे हैं, अल्लाह हमारे को गफलत की सिफत से निकाले। ये गफलत यही नासूत रही इसलिए नासूती को जो है दूसरे काम इस्लाम चाहिए जो खुदा को भूलता है उसमें खैरावा निकलने की कोशिश नहीं करता वो दूसरा थी। तो बंदे में हम फरमा रहे हैं कि जब तक दिल में वो खरार ना पकड़े हम इस सिफत से नहीं कर सकते। आप कितनी कोशिश कर लो जुबान से ला इल्लल्लाह बोल लो, आप कितना जिक्र करते कर लो, दिल में जब तक खराब ना पकड़े आप इस सिफत से नहीं निकल सकते गफलत की। और गफलत की दिल में खराब पकड़ने के वास्ते आपको सांस की हिफाजत करना पड़ेगा क्योंकि सांस जो है दिल से उठने और खराब पकड़ने की जगह है और सांस जाती है नाक से और मुंह से। इसीलिए मेरी मौत इस्लाम के साहब आपने बात समझे। इसके बाद इस आयत के बाद बंदगी में लिख रहे हैं कि और इमाम जाहिद ने अपनी तफसीर में लाया है कि अल्लाह का जिक्र फर्ज तमाम है कि किसी वक्त और किसी हाल में भी जिम्मे से साकित नहीं होता, तभी भी जो है साकित नहीं हो सकता हमारे ऊपर क्योंकि हम खुदा के वास्ते पैदा हुए। पैदाइश को आप समझेगी क्योंकि जिक्र दवाम किसी शर्त से मशरूत नहीं है और दूसरे फराइज मशरूत है। वक्त बात आपको नमाज पढ़ना है, आप जब तक जो है फजर नमाज अदा नहीं कर सकते जब तक वक्त ना हो जाए, वक्त होगा तो जो है आप वो फर्ज अदा करेंगे, आप पाक रहेंगे तो आप जो नमाज पढ़ सकेंगे, आप वजू करेंगे तो आप नमाज पढ़ सकेंगे, आपके ऊपर जो है वो शर्त लागू होगी तो आप जो है ज़कात अदा कर सकेंगे, रमजान आएगा तो जो आप रोजे रख सकेंगे। दूसरे जो फ़राइज़ है वो मशरूत है यानी शर्त है, ये होना तो जो आप ये कर सकते। ज़िक्रुल्लाह एक ऐसा फर्ज है जो गैर मशरूत शर्त ही नहीं है, हर हाल में लाकर जिक्र करना है, खड़े हुए बैठे हुए लेटे कोई आपको चारा नहीं, आप उफ नहीं हो सकते, आप कुछ नहीं हो सकते, आप जब तक होश है आपको लाकर जिक्र करना, जब तक आपकी सांस चल रही है आप होश में है आप खुदा की याद में रहना है। अब आपको हमेशा अल्लाह की याद में रहने के वास्ते आप बात भी कर रहे हो खा भी रहे हो सो भी रहे हो तो उसके वास्ते जो आप कैसे सांस है, अब मैं बात भी कर रहा हूँ तो मेरी सांस चल रही है, और जब मैं खा भी रहा हूँ तो मेरी सांस चल रही है, मैं जो है जो भी काम कर रहा हूँ तो हाँ सांस चल रही है। तो अगर सांस को अगर पकड़ लिया जाए इस्लाम इसलिए अल्लाह की तरफ से सांस अगर अल्लाह का जिक्र करने लग जाए तो आप खा रहे हो पी रहे हो आप काम कर रहे हो आप अल्लाह की याद में रहेंगे। उसकी प्रैक्टिस के वास्ते सुबह शाम जिक्र में बैठते हैं ताकि जो है आप दिन भर आप कुछ काम कर जो भी कर रहे हैं आपका जो है जिक्र खराब पकड़े और आप अल्लाह की याद में रहे। लेकिन इतना आसान नहीं, इसके आपको काफी मेहनत करनी होती है। इमाम जाहिद ने अपनी तफसीर में लाया है कि अल्लाह का जिक्र फर्ज दवाम है कि किसी वक्त और किसी हाल में भी जिम्मे से साकित नहीं होता क्योंकि जिक्र दवाम हमेशा का जिक्र किसी शर्त से मशरूत नहीं है और दूसरे फराइज मशरूत है। बस इससे भी मालूम होता है कि अल्लाह का जिक्र तमाम फराइज में अहम तरीन मकसूद है। इससे मालूम हुआ कि जो है कोई फर्ज नहीं है जो हमेशा के वास्ते जिक्रुल्लाह के, तो मालूम हुआ कि जिक्र दुआ जो है अहम तरीन फर्ज है। इससे भी मालूम होता है कि अल्लाह का जिक्र तमाम फराइज में अहम तरीन मकसूद है। चुनाचे खुदा पाक व बरकर ने फरमाया, अल्लाह तआला के अच्छा मुबारक है अल्लाह की इबादत में सबसे बेहतरीन सबसे बड़ी इबादत अल्लाह का जिक्र है, जो महंगियों के सबके में पर फर्ज हुआ है। हमारा काम है कि जो उसको बजा लें। चुनाचे खुदा पाक और बरतर ने फरमाया कि और कायम रखो नमाज को, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई के काम और बुरी बात से, वाला जिक्र लायक और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। बस आगे बंदे में लिख रहे हैं कि बस अजीज जान ले कि जिक्र दुआम के बगैर नफ्स का तज़किया और तजरीद और तफरीद हासिल नहीं होते। इन नफ्स की जो पाकी है आपको जो एक सुई हासिल होना, जो आपको अंदर तनहाई हासिल होना है, सिर्फ खुदा ही खुदा रहना, इसके ऊपर तो जो है काफ़ी लंबी जो रुतू भी की जा सकती है। ये इस्तेमाल भी हैं जो कि तजरीद और तफरीद के बंदे में लिख रहे हैं कि मगर नफ्स जो है आपका पाक होना है, वहाँ नफ्स भी काफ़ी खराब हो जाता है। आप जो है जो दुनिया में ज़िंदगी जो गुजारते हैं ये जंगालूद हो जाती है, हमारा दिल हमारा नफ्स, तो ये अगर पाक होना है और आपको एक सुई हासिल होना है तो वो अल्लाह ताला का जिक्र है। तो भी फरमाते हैं हर चीज़ का एक साइकिल है, दिल का साइकिल अल्लाह का जिक्र है। बंदे लिख रहे हैं कि अजीज़ जान ले कि जिक्र दवा के बगैर, हमेशा अल्लाह का जिक्र करने के बगैर नफ्स का तज़किया, नफ्स का पाक होना और तजरीद और तफरीद हासिल नहीं होते और दिल से परागंदगी दूर नहीं होती, जो हॉल है वो दूर नहीं होती और इत्मीनान कल्ब हासिल नहीं होता। शैतानी वसवसों नफसानी ख्वाहिशात और मुरादात से इंसान बाहर नहीं आता। हम कोशिश कर रहे हैं वसवसों को रोकने की, ख्वाहिशात जो है अंदर नहीं पैदा होने की, आप खाली जो है सोच रहे हैं, उसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो आपको जो है जिक्रुल्लाह है, जब तक आप जिक्रुल्लाह नहीं करेंगे आपसे जो है शैतानी वसवसे जो अंदर जो ख्वाहिशात पैदा होगी, आप नहीं चाहते भाई वसवसे आना, मैं नहीं चाहता कि जो है ये ख्वाहिशात जो है मेरे अंदर पैदा होना, अल्लाह के अलावा कोई ख्वाहिश पैदा होना, लेकिन खाली ऐसा चाहने से नहीं होता, क्योंकि बंदगी में फरमा रहे हैं कि शैतानी बंदगी में फरमा रहे हैं कि जिक्रुल्लाह के बगैर शैतानी वसवसे नफसानी ख्वाहिशात और मुरादात से इंसान जो है बाहर नहीं आता। बस चाहिए कि अल्लाह के जिक्र में इस कदर हमेशा ही करें, इस कदर हमेशा की हमेशा अल्लाह का जिक्र करें कि औकात में से किसी वक्त और हालात में से किसी हाल में अल्लाह के जिक्र से खाली ना रहे। आने में जाने में खाने में सोने में सुनने में कहने में बल्कि तमाम हरकत और सकनात में हाजिरुल वक्त रहना चाहिए ताकि दिल बेकारी में ना बुझे। बड़ी खास बात है बंदगी ना कहा, इसको सुनते हैं थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बंदगी में फरमा रहे हैं बस चाहिए कि अल्लाह के जिक्र में इस कदर हमेशा ही करें, इस कदर कोशिश करें कि हमेशा अल्लाह का जिक्र करें कि औकात में से किसी वक्त और हालात में से किसी हाल में अल्लाह के जिक्र से खाली ना रहे। आने में जाने में खाने में सोने में सुनने में कहने में बल्कि तमाम हरकत और सकना, आदमी या तो जो है साकिन रहता है या रुका रहता है, या तो हरकत करते रहता काम में रहता या तो खाली बैठा, तो तमाम हरकत और सकनात में हाजिर वक्त रहना चाहिए। देखिए बड़ी खास बात है, पहले हमने जो है निकला की जो है सीरीज में जो है ये गुफ्तगु की थी कि बंदगी में फरमाया ये खास बंदगी में का जो है दिया हुआ फॉर्मूला है कि हाजिर वक्त रहे, आप प्रेजेंट रहे, नाव में रहे, जो जिक्र करते हैं उनके वास्ते जो है ये खास बात है। आपको जो वसवसे आते हैं जो खतरा आते हैं या तो खतरा जो है पास के होते हैं या तो फ्यूचर के, ये बात याद रखिए, या खतरा पास के होता है जो वसवसे आ रहे हैं आपको पास के बारे में सोचते रहते हैं या जो है फ्यूचर के बारे में सोचते रहते, तो अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो कोई वसवसा नहीं। अब आप चूंकि प्रेजेंट में आप मुझे सुन रहे हैं आपको कोई वसवसा नहीं आ रहा, मैं कहता जा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हैं आप फॉलो करें चीज को, तो आपको कोई खतरा नहीं आ रहा क्योंकि आप प्रेजेंट में हैं। इसीलिए बंदे फरमाते हैं कि जो है हाजिर वक्त रहे, प्रेजेंट में रहे, अब नाउ, अब उसको पकड़ने के वास्ते नाव को कैसा पकड़ेंगे आप, प्रेजेंट कैसा पकड़ेंगे, वो चीज ना आपको, क्योंकि आप मेरे को पकड़े हुए हैं इसीलिए आप प्रेजेंट में हैं। आपको हमेशा का प्रेजेंट में रहना है, सांस, हर आने जाने वाली सांस, ना पिछली सांस का सोचना है ना आने वाली सांस का सोचना है, जो सांस चल रही है उसकी नजर है, हर दम पे नजर है, तो आप प्रेजेंट में नहीं, खुद हो आपको सिर्फ अपनी सांस को नजर रखना है, आप प्रेजेंट में हो गए, आप भी प्रेजेंट में आए बस सोचते हैं, आप भी प्रेजेंट में आएंगे आपको सोचते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया हुआ है, हाजिर उल वक्त रहे, ये नाव का पावर है, ये प्रेजेंट में रहने का पावर है, हकीकत में अल्लाह प्रेजेंट में हमेशा, अल्लाह हमेशा जो है सुबह नाव ही है। तो देखिए बंदे में लिख रहे हैं कि तमाम हरकत और सरनात में हाजिर उल वक्त करना चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा वसूल आए तो आप सब छोड़ के बैठ जाएंगे, अब खुल के बैठ जाएगा क्या, तो आप मुझे तमाम वसूल रुक जाते, अब सोचिए बंदे में फरमाया कि बल्कि तमाम हरकत और सरनात में हाजिर उल वक्त करना चाहिए ताकि दिल बेकारी में ना गुजरे बल्कि दम से वाकिफ रहे, आप दम से वाकिफ रहना सांस से दिसो आप भी उससे वाकिफ रहे तो आप भी प्रेजेंट में रहेंगे, आपका जो खुद बहुत दिक्कत जारी होगा, बल्कि दम से वाकिफ रहे ताकि कोई दम गफलत से ना निकले, कोई दम जो है गफलत से ना निकले, दम की बड़ी कदर लिख रहे हैं, ताकि दम से ताकि कोई दम यानी कोई सांस आपकी जो है गफलत से खुदा को भूलने के ना निकले। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो सांस अल्लाह के जिक्र के बगैर निकलती है वो मुर्दा है, मतलब रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी इसी सांस की तरफ इशारा फरमाया है, क्योंकि सांस की निगहबानी के बगैर जिक्र ज़बान हासिल नहीं होता और मुर्दनी यानी जो जो मुर्दगी है अंदर दिल मर जाता है उसकी सिफत से अलग नहीं हो सकता और दिल से गफलत नहीं जाती, अगर तू मर्द आरिफ है तो सांसों की निगरानी कर, दोनों जहां की बाचा तेरी एक ही सांस में तेरी मिल हो जाएगी। हाँ ये शेर का तर्जुमा है, हजरत सूफिया साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह सरदर के नबी के जो है हाशिए पर उसके आपने शरह की है, उसने आपने जो है कभी से कुत्ती लिखी है, फिर इसमें अल्लाह फरमा रहा है, मैं अपने अल्लाह से कह रहा हूँ कभी से कुत्ती का इस तरह से जो है मफहूम है, अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे तेरे जो दम है जो सांस है मिठास बंद रहेगी, तेरे दम मेरे पैगंबर के माने, तेरा हर दम मेरे पैगंबर के माने, तूने अगर कोई दम बगैर मेरी याद के लिया तो गोया तूने मेरे पैगंबर का कत्ल किया। मुझे डर लगा कि ये दम की खबर है, देखिए दम एक एक सांस की खबर है, इसलिए एक सांस की खबर दो जहां से अदर बोलते हैं, तो अल्लाह कह रहा है हदीस कुदसी में कि तेरे दम मेरे पैगंबर के माने है, अगर तूने कोई दम मेरी याद के बगैर लिया तो गोया तूने मेरे पैगंबर का कत्ल किया, और अगर तूने दम मेरी याद के साथ लिया तो पैगंबर का काम है मुझसे वासिल करना, तो तेरा दम मुझसे वासिल करेगा मुझसे मिलाएगा। ये बहुत बड़ा जो है वसीला है, ये दम जो है बहुत बड़ा वसीला है, इसलिए मेरी मौत का सबका है हमें जो है वो दम पकड़ा है, इस्लाम दम और कदम पर नजर रखो, इस्लाम ने जो है दम ही की जो है ताकीद दी है, ताकीद दी है। भी इसी सांस की तरफ इशारा फरमाया है, क्योंकि सांस की निगहबानी के बगैर जिक्र दवाम यानी हमेशा का जिक्र हासिल नहीं होता और मुर्दनी की सिफत जो सांस की जो मर जाने की जो दिल की जो मर जाने की जो सिफत है उसे अलग नहीं हो सकता और दिल से गफलत नहीं जाती। शेर बंदगी में लिखा है तो उसका तर्जुमा है, तू मर्द आरिफ है तो अल्लाह को पहचानने वाला, तो सांसों की निगरानी कर, दोनों जहां की बातचीत तेरी एक ही सांस में तेरी मिल हो जाएगी, तेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। आगे खिता का तर्जुमा है कि उम्र की हर सांस जो गुजर रही है वो एक मोती है जो उसकी कीमत दोनों जहां का महसूल है, एक एक जो सांस है उसकी कीमत जो है दो जहां से जो है बढ़ती है, तो उसका पूरा महसूल है। उम्र की हर सांस जो गुजर रही है वो एक मोती है कि उसकी कीमत दोनों जहां का महसूल है, तो उस खजाने को मुफ्त में बर्बाद कर देने को पसंद मत कर, अगर ऐसा करेगा तो फिर तू खाक में खाली हाथ और बेसरो सामान जाएगा। अगर तुम्हें कुछ खजाना लेके जाना है तो सांसों की बात कर लो, एक सांस दोनों जो है मुल्क से दोनों जहां से जो है अफसर इतना बड़ा खजाना तुझे हाथ लगेगा। रसूल के कौल में हिकमत ये है कि सांस के लिए दिल में और तमाम आजा में हर हर ऑर्गन तक जो है सांस दाखिल होती है, रसूल के कौल की हिकमत कौन में हिम्मत यह है कि सांस के लिए दिल में और तमाम आजा में दखल, और जब सांस अल्लाह के जिक्र के साथ तमाम आजा में सरायत करती है, एक एक बावल तक सांस पहुंच रही है, और जब सांस अल्लाह के जिक्र के साथ तमाम आजा में सरायत करती है और जिक्र के पैर से जिंदगी का असर तमाम आजा में पैदा होता है, तो ईमान के दरख को जाकिर के दिल में उगाती है। सांस से जब जिक्र जाएगा तो सांस जहां तक जा रही है आपकी, वहां तक जो है जिक्र आपका जा रहा है। इसीलिए हमारे पास जो है कई बशारतें सानी मेहदी रजुल को और कई दूसरे बुजुर्गों की, जिनका बाल बाल इल्ला हो गए, सांस जो है उनकी उनको बाल बाल इल्ला बना रही, सरापा जो है वो जिकला बन चुके थे। बुजुर्गों के कौल में हिम्मत यह है कि सांस के लिए दिल में और तमाम आजा में दखल है, और जब सांस अल्लाह के जिक्र के साथ तमाम आजा में सरायत करती है और जिक्र के फैज से जिंदगी का असर तमाम आजा में पैदा होता है, तो ईमान के दरख्त को जाकिर के दिल में उगाती है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान को ऐसा ही उगाता है जैसा कि पानी तरकारी को उगाता है। तो हमारा जो जिक्र है इल्लल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह ही है, उसने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान को ऐसा ही उगाता है जैसा कि पानी तरकारी को उगाता है। आपको हमेशा फ्रेश रहना है ईमान को, तो जो आप पानी डालते रहना है, कारण झाड़ भी मुरझा जाएगा, पहले जो है वो जो है सूखेगा फिर मुरझा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, झाड़ पड़ के जो वो खत्म हो जाएगा। तो आपके ईमान को ताज़ा रखने के वास्ते आपको पानी डालना है, और वो पानी जो है आपका जिक्र है, पानी आपका जिक्र है, इसलिए जो है आपके अमल ज़रूरी है, लाजिम है। चुनांचे नबी करीम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान को ऐसा ही उगाता है जैसा कि पानी तरकारी को उगाता है। अज़ीज़ जान ले कि जब मकसूद ये है कि सांस की निगहबानी के ज़रिए अल्लाह का जिक्र दिल में करार पकड़े, और सांस अल्लाह के जिक्र के साथ अंदर जावे और बाहर आए, खा मुंह से हो या नाक से, और ये दो रास्ते सांस के हैं, बजरिए सांस के गुजरे बजरिए सांस के गुजर के नाक जिक्र का आला नहीं रहती, क्योंकि सांस मुतलक है। और सैयद मोहम्मद यानी महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा का मकसूद ये है कि सांस की निगहबानी के जरिए से अल्लाह का जिक्र दिल में करार पकड़े और खुदा के जिक्र से इत्मीनान कल्ब हासिल हो। चुनांचे खुदा पाक व बरतर ने फरमाया है कि और आराम पाते हैं मोमिनों के दिल अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह बज़िक्र अल्लाह तत्मईनुल कुलूब, और एक बार अल्लाह कह रहा है कि और आगा रहो सुन रखो कि अल्लाह के जिक्र से आराम पाते हैं दिल, अल्लाह के जिक्र से जो दिल आराम पाते हैं मुतमईन होते हैं, इतने मुतमईन रहते हैं। इसके लिए सुना बंदगी में रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने फुकराए इकराम के साथ हुजूर में बैठे हुए हैं, वहाँ जो 45,000 का लश्कर नजर आ रहे हैं और जितना में इतमान से बैठे हुए हैं, ये इतमान होता है, इतमान से रहते हैं अल्लाह के जिक्र से, ऐसा इतमान हासिल होता है, क्योंकि देखिए हकीकत में इतमान सिर्फ अल्लाह को है, मुतमिन सिर्फ अल्लाह है, फना नहीं कुछ नहीं, हिसाब किताब नहीं कुछ भी नहीं, अल्लाह है उसकी बात छा, मुतमिन सिर्फ अल्लाह है। अब अल्लाह में फना हुआ अल्लाह का या अल्लाह की याद में रहा, उसमें डूबा रहा, उसके मुशाहदे में रहा, उसको इत्मीनान हासिल होगा। अब मामूली फसाद फितना हुआ घर के बाहर, तो जो है घर में हौले में छिड़ जाती है, वहां पे बंदगी में के पास अतरा में जो है लश्कर है हजारों का, पूरे आवाजों के साथ नकारों के साथ बजाते हुए जो है ठहरे हुए, ये लोग जिक्र में मशगूल है, बाहर दुश्मन परेशान है, आया ये है भी या नहीं घर के अंदर, तो अल्लाह जिक्रुल्लाह तत्मईनुल कुलूब, आगा हो तो कह रहा अल्लाह का सबूत है हमारे मुसलमान जी, जिक्र से अल्लाह के जिक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं। और मुअज्जिब में लाया है किताब है कि जिक्र और जिक्रा जिसके मायने याद करने के हैं, हाँ ऐसा ही है, लेकिन जानना चाहिए कि जिक्र क्या है और मजकूर कौन है। इंशाल्लाह चाहता हूँ इसके ऊपर जो गुफ्तगू है चाहता हूँ हमेशा से की जाए, इतना के ऊपर है इतना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ और दीदार खुदा के ऊपर भी जो है इसकी बहस है, अच्छी बड़ी प्यारी बातें हैं दीदार खुदा के मतलब, कि मैं इस्लाम के सहाबा के वास्ते हदीस भी आई है जिसमें सभी हदीस है वो भी इसमें जो है नकल की गई है। अल्लाह चाहता हूँ एक दो रिश्तों में जो है इंशाल्लाह वाकई में जो है जो गफलत की सिफत जिसके लोगों को तबू हो रही है, अल्लाह ताला हमसे जो है वो सिफत निकाल, ये कोई आसान बात नहीं है, हमें गफलत की सिफत से निकलना नासूर से निकलना कोई मजाक नहीं, इसे निकलना कम से कम हम ये जान ली कि जो है ये गफलत हराम है, ये नासूर है, इसमें रहने वाला गुजर के चौपान के माने, इससे निकलने वाला जो है हमें बनना है वो इरादा करना है, अल्लाह ताला मदद करेगा। अल्लाह से दुआ है कि बढ़ेगा सबसे में गफलत की सिफत से नामिश निकाल।